जेजाक भुक्ति का इतिहास लेखन डैश जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का नाम है। यहाँ चंद्रादित्रे वंश अथवा चंदेलों का शासन था और इनके इतिवृत्त अब अप्राप्य से हैं। महोबखंड महोत्सव खंड नामक काव्य ग्रंथ जो प्रत्यक्षतः पृथ्वीराज रास का एक भाग जान पड़ता है में 1181 में चंद्रात्रे शासक परमर्दी के विरुद्ध पृथ्वीराज के आक्रमणों का वर्णन है। इसे परमर्दी रास भी कहा जाता है। यह संभव है कि मूलतः यह जेजाक भुक्ति में चंद्रात्रे स्रोत के आधार पर लिखा गया था और बाद में पृथ्वीराज रासों के निरंतर बढ़ते हुए संग्रह का भाग मात्र बनकर रह गया। इसकी कई प्रतियां मिलती हैं जिससे इसके वास्तविक इतिहास का प्रश्न और भी जटिल हो जाता है। चंद्रात्रेय वंश की उत्पत्ति के पौराणिक विवरण के पश्चात काव्य का मुख्य खंड 1182 में पृथ्वीराज चौहान द्वारा महोत्सव नगर पर अधिकार यद्यपि वही से अधिक दिन नहीं रख सका की चर्चा करता है। आल्हा एवं उद्दल परमर्दी के दो सेनापति थे जिनके शौर्य एवं रणचातुर्य का विवरण इस काव्य में किया जाता है। मूल काव्य में संभवतः जेजाक भुक्ति को अंततः विजय प्रदर्शित किया गया था, जैसा कि अभिलेखों से भी प्रमाणित होता है कि परमर्दी ने 2 साल के भीतर ही महोत्सव को पुनः जीत लिया था। किंतु चंद्र के संस्करणों में महोत्सव पर पृथ्वीराज का ही आधिपत्य तथा तत्परिणाम स्वरूप परमर्दी को शर्म से मृत्यु प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। बुंदेलखंड की मौलिक परंपरा ने हिंदी की बुंदेली लोकभाषा में अल्हा रासो नामक काव्य को सुरक्षित रख छोड़ा है, जिसे जगनिक जो परमर्दी का वह दूत था जो अल्हा एवं उद्दल को पुनः परमर्दी की सेवा में लाने में सफल हुआ था की कृति मानी जाती है। इसमें वही कथा है किंतु स्पष्टतः इसमें जेजाक भुक्ति के उपयुक्त 2 नायकों की प्रशस्ति लेखन की इच्छा स्पष्ट है। इसमें परमर्दी की कायरता पर दुर्बलता पर महोत्सव खंड से भी अधिक बल दिया गया है तथा इसका प्रयोजन केवल इन 2 नायकों की गरिमा का गान जिन्होंने ऐसे व्यर्थ शासक के लिए भी अपने प्राण निछावर कर दिए। 16वीं शताब्दी में चंद्रात्रे शासन वंश के बाद बुंदेलों का शासन आया। ये कई राज्यों में विभक्त थे तथा सामान्यता मुगलों के अधीनस्थ प्रतीत होते हैं। बुंदेल इतिहास से संबंध काव्य तथा जीवन चरित्र मिलते हैं जिनमें छत्रसाल 1646 से 1731 पर लिखा गया छत्र प्रकाश विशेष रूपेण उल्लेखनीय है। जेजाक की दक्षिण पूर्वी सीमा पर 16वीं शताब्दी से एक बघेल राजवंश आया। पद्मनाभ लिखित वीरभद्र चंपू जो 1578 ईस्वी में पूर्ण हुआ इस राजवंश के एक शासक का चरित्र चित्रण है। तीर भुक्ति में इतिहास लेखन डैश तीर भुक्ति वही भूप्रदेश था जहां प्राचीन काल में वज्जी गणतंत्र का अस्तित्व था। 11वीं शताब्दी के अंत में हम इसे कर्नाटक राजवंश द्वारा शासित पाते हैं। 1326 में मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध युद्ध में इस वंश का शासक हर सिंह अपने राज्य के नेपाल वाले खंड में चला गया, किंतु कुछ ही वर्षों बाद कामेश्वर नामक ब्राह्मण ने अपने गांव के नाम पर यहां सुगौन नामक राजवंश की स्थापना की। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिव सिंह सुगौन के शासनकाल में विद्यापति ने पुरुष परीक्षा लिखी जिसमें विविधन इतिहास कथाएं इस विषय के विवाद के अंतर्गत दी गई हैं कि किसी राजकन्या द्वारा उपयुक्त वर का वर्णन कैसे किया जाए। अन्य युगों के नायकों को कलयुग के लिए अनुपयुक्त बताकर वर्तमान युगीन शासकों के विवरण दिए गए हैं और इस प्रसंग में नंदों चंद्रगुप्त मौर्य शूद्रक विक्रमादित्य भोज बंगाल का लक्ष्मण सेन हमीर आदि शासकों की चर्चा की गई है। कर्नाटक के शासक हर सिंह से संबंध कई कथाएं दी गई है। विद्यापति का दूसरा ग्रंथ कृति लता है जिसमें कृति सिंह सुगौन 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का प्रशस्ति गायन है। पुरुष परीक्षा संस्कृत में और कृति लता अपभ्रंश में है। ताराचंद्र नामक एक परवर्ती तिरभुक्ति शासक के ऊपर वैद्यनाथ द्वारा लिखा गया ताराचंद्रोदय एक अन्य संस्कृत काव्य है। नेपाल में इतिहास लेखन डैश नेपाल के मुख्य प्रलेख वंशावली नाम से ज्ञात है। इनके अंतिम दो संस्करणों में उपलब्ध है इनके अंतिम दो मुख्य संस्करणों में उपलब्ध है जिनमें एक बौद्ध लेखकों द्वारा एवं दूसरा ब्राह्मण लेखकों द्वारा सुरक्षित रहा। इनकी तिथि क्रमशः 1800 तथा 1834 ईस्वी है। इनके अतिरिक्त अन्य कई वंशावलियाँ मिलती हैं जिनमें देश की उत्पत्ति तथा विविध शासन वंशों के इतिहास सुरक्षित रखे गए हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं भू पुराण नामक एक बौद्ध ग्रंथ क्षेत्रीय पुराण के रूप में लिखा गया जिसमें देश की उत्पत्ति का विवरण तथा विभिन्न कथाएं दी गई हैं। यद्यपि इतिहास लेखन के प्रति इसका कोई विशिष्ट योगदान नहीं दिखाई पड़ता। इन वंशावलियों में लेखकों द्वारा अपने राजवंशों को त्रुटिपूर्ण पौराणिक तिथि क्रम से जोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पौराणिक शासकों के पश्चात कलयुग में यहाँ पहले किरात वंश का शासन बताया गया है किंतु इसका कोई अन्य ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। ईस्वी संवत की प्रारंभिक शताब्दियों में यहाँ लिच्छवियों का शासन था जिन्हें प्राचीन भारतीय क्षत्रियों के सूर्य वंश से संबंध किया गया है। वंशावली परंपरा नेपाल पर गुप्त प्रभुसत्ता स्वीकार करती है किंतु इस संपूर्ण काल में लिच्छवी शासकों की अविरत श्रृंखला भी प्रदर्शित करती है। वंशावलियों में एक समय में तिब्बती आधिपत्य का उल्लेख हुआ है जिसका अंत रुद्रदेव द्वारा तिब्बतियों के निष्कासन संभवतः 704 ईस्वी में द्वारा संपन्न हुआ। 12वीं शताब्दी के पश्चात लिच्छवी राजवंश की दीर्घकालीन परंपरा का अंत हुआ जब अरिमल कोष्टक 1200 से 1600 ने मल नामक नाम से विख्यात शासन वंश की स्थापना की। वंशावली परंपरा में इन्हें भी सूर्यवंशी कहा गया है। अरिमल के प्रपुत्र के पश्चात 1768 में गोरखों कोष्टक चालू चित्रकूट से गए राजपूत जो अपने लिए गुहिल पुत्र पूर्वज परंपरा का दावा करते हैं कोष्टक बंद की विजय तक क्रम से मलों की तीन अन्य शाखाओं ने राज किया। 18वीं शताब्दी के पश्चात यह इतिहास परंपरा गोरखा वंशावली तथा अन्य ग्रंथों में आगे बढ़ती है। कामरूप में अर्थात असम में इतिहास लेखन डैश हर्षचरित के 7वें अध्याय में बाण ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन का हर्ष के पक्षधर के रूप में उल्लेख किया है। इस प्रदेश का परवर्ती इतिहास आहोम शासकों जिन्होंने 13वीं शताब्दी से आगे शासन किया के अंतर्गत लिखित बुरंजियों कोष्ट में वंशावलियों में प्राप्त होता है। ये गद्यात्मक इतिवृत्त हैं जो अधिकांशतः 17वीं शताब्दी और बाद में लिखे गए। ये भारतीय इतिहास लेखन परंपरा से संबद्ध है एवं कामरूप के इतिहास को पौराणिक प्राचीनता से संबंधित करते हैं। विभिन्न पौराणिक शासन वंशों एवं शासकों की चर्चा के पश्चात आहोम विजय की चर्चा होती है। आहोम थाई उत्पत्ति के थे जिनका धीरे धीरे ब्राह्मणीकरण होता गया। सुहुनग मुन्नग 1497 से 1539 ने संस्कृत नाम स्वर्ग नारायण ग्रहण किया। इसके लिए अपने साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार किया तथा बंगाल से होने वाले तुर्की आक्रमणों का सफल प्रतिरोध की प्रस्तुत किया। बुरंजियों में इन युद्धों का रोचक तथा विस्तृत विवरण मिलता है। बुरंजियों की संख्या बहुत बड़ी है तथा इनमें 19वीं शताब्दी तक का कामरूप का विस्तृत इतिहास प्राप्त होता है। कुछ में कामरूप से इतर प्रदेशों का इतिहास भी सम्मिलित है। इस प्रकार 17वीं शताब्दी की एक बुरनिज्म में पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात दिल्ली में तुर्की शासकों का इतिहास लिखा गया। यह उल्लेखनीय है कि श्रीनाथ जिसका समय 19वीं शताब्दी है जैसे कुछ बुरंजी लेखक अपने कृतियों के लिए संस्कृत शब्द वंशावली का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार उन्हें परंपरागत भारतीय इतिहास लेखन से संबद्ध करते हैं। श्रीनाथ ने अपनी कृति को काव्य साहित्यिक कृति न कहकर शास्त्र एक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ कहा है। श्रीलंका में मध्ययुगीन इतिहास लेखन डैश ऊपर श्रीलंका के समृद्ध इतिहास लेखन की चर्चा की जा चुकी है और इस प्रसंग में ब्राह्मण इतिहास लेखन में दृश्यमान प्रवृत्ति के समान इतिहास से पौराणिकता की ओर उन्मुखता पर भी विचार किया गया है। छठी शताब्दी के प्रारंभ में महानाम रचित महावंश बौद्ध इतिहास इस प्रकार के काव्य इतिहास को प्रस्तुत करता है। यह दीप वंश पर आधारित है। महानाम मुख्य रूप से दो नायकों देवानाम पियति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा दूटठ गामनी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कार्यों का प्रशस्तिपूर्ण विवरण प्रदान करना चाहता है। इनमें दूसरा शासक राष्ट्रीय नायक के रूप में भी ज्ञात है जिसने देश को तमिल प्रभुत्व से मुक्त किया। प्रारंभ में ही वह अपने लेखन का उद्देश्य बौद्ध धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करना तथा जगत की नश्वरता के प्रति तथा अपने पाठकों में दृष्टि को उत्पन्न करना बताता है। बाद में महानाम